सभी सीधा होकर बैठेंगे। And bring your attention to the center of the forehead. जहां हम तिलक लगाते हैं वहां पर अपने ध्यान को लेकर आएंगे। Gently visualize जैसे तिलक लगा हुआ है वहां पर। अभी तो तिलक नहीं लगा है लेकिन आप विजुअलाइज कीजिए कि तिलक लगा हुआ है वहां पर। गोल्डन कलर का तिलक चंदन का या लाल रंग का टीका, उसको विजुअलाइज करना है। जस्ट उसको देखे और उसको होल्ड करे उस पिक्चर को। शुरू शुरू में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, कभी किसी को कम दिखाई देगा, किसी को ज्यादा दिखाई देगा। दैट इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, बट इट्स ऑल अबाउट अ लिटिल प्रैक्टिस। तो ये 3 दिन में हम उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि मंडे तक हम मेथड को सीख कर जाएंगे यहां से। तो जब भी रेड लाइट ऑन है, इट इज टाइम टू बी इन साइलेंस एंड अपनी तरफ देखने का। देखें भ्रिकुटी के बीच अब उस तिलक की जगह एक लिटिल स्टार एनर्जी को विजुअलाइज करना है। एनर्जी जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है उसको विजुअलाइज करना है। बस एक लिटिल स्टार की तरह इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। कुछ नहीं और करना है, जस्ट उसको देखना है। जैसे आकाश में सितारे होते हैं वैसा ही सितारा शक्ति मैं आत्मा इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। और उसको देखते हुए हम संकल्प करेंगे, क्योंकि जो हम अभी थॉट क्रिएट करेंगे वो हमारी कॉन्शियसनेस को चेंज करती है। तो उस सितारे को देखते रहे और साथ में संकल्प करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। Gently repeat in the mind, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। I am a powerful soul। देखते जरूर जाना है साथ साथ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। I am a powerful soul। बस एक ही थॉट क्रिएट करनी है और उसी को पकड़ना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। हर सिचुएशन में पक्का करें अपने आप के साथ, हर सिचुएशन में पर्सनल, फैमिली, प्रोफेशनल, हर सिचुएशन में मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, I am a powerful soul। एंड इसको अब फील करें कि हर सिचुएशन में शक्तिशाली आत्मा, पावरफुल सोल कैसे होती है। हाउ, व्हाट डज इट मीन, अपने लिए देखना है इसको। बहुत सारी बातें आती हैं सारा दिन में, आई एम अ पावरफुल सोल, इसका मीनिंग क्या है, मेरी लाइफ में इसका मतलब क्या है। और एक क्षण के लिए अपने घर पहुंच जाएं, परिवार के बीच। क्या आजकल जीवन में कोई बातें चल रही हैं घर पे? कोई सिचुएशन, कभी कभी किसी का बिहेवियर, किसी का हेल्थ इश्यू घर पे, बातें पर्सनल, उसमें अपने आप को देखें कि वो जो बातें मेरे घर पे चल रही हैं, उसमें मैं शक्तिशाली आत्मा हर बात में, हर एक के बिहेवियर के साथ What is the response of a powerful soul? And अपने पिछले वीक को देखें। एक वीक में तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। उन सब में क्या कोई सीन ऐसा था जिसमें मेरा रिस्पॉन्स उतना पावरफुल नहीं था? और अगर नहीं था तो उस सीन को अभी सामने लेकर आए। सिचुएशन वैसे की वैसे रहेगी जैसे थी, उस सीन को अगर हमें अब अलग तरीके से फेस करना है तो सी योरसेल्फ के पावरफुल सोल उस सीन को कैसे हैंडल करता। सामने वाले का बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा था, मेरा रिस्पॉन्स कैसे डिफरेंट होगा। Powerful, strong, fit, healthy soul. अगर किसी को दिखाई दिया कोई सीन और उसमें रिस्पॉन्स अभी चेंज किया तो जेंटली हाथ उठाओ, पता चले कुछ दिखा, कुछ दिखा पिछले हफ्ते में क्या हुआ था, हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया था और हम कैसे कर सकते हैं. रेज योर हैंड्स. गुड. ओके. ओम शांति. एज अ डॉक्टर हमें पता है कि हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, राइट है. लेकिन पूरी मेडिकल साइंस में हमें यही सिखाया गया कि बॉडी की हेल्थ क्या है और बॉडी की डिजीज क्या है, बॉडी की फिटनेस क्या है और बॉडी की वीकनेस क्या है. और आपको एक मिनट में पता चल जाएगा कि भाई ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये हेल्दी है, ये नहीं है. इजी. ये तीन दिन हमें क्या करना है कि वही वर्ड्स वही रहेंगे लेकिन उनको कहाँ यूज करना है कि आई द बीइंग. आज सुबह का सेशन आपने क्या सुना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बोलिए मैं कौन हूं. कौन कौन मानता है, कौन कौन नहीं मानता है, कोई भी नहीं है जो नहीं मानता है. बड़े अच्छे बच्चे हो आप. मैं तो पहली बार नहीं माना था. आप सब मानते हो. हाँ, साइंस में तो दिखाया नहीं कहीं भी कि आत्मा क्या होती है. दिखाया साइंस में. यू नो व्हाट, द टाइम हैज कम, द टाइम हैज कम वेयर साइंस हैज टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी टू द वर्ल्ड. दैट इज द टाइम विच हैज कम. अगर समाज में होने वाली हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन जिनको चाहिए दे हैव टू यूज नंबर 105 ट्रांसलेशन पर, अपने उस पर 105. और यू कैन कम इन द फ्रंट वेयर इंग्लिश इज रिटन. रिटन वेयर? अच्छा अच्छा यहां आकर बैठना. ऑलरेडी आके बैठ गए. 105. सो द टाइम हैज कम. अगर हमें समाज की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, हर व्यक्ति को हेल्दी बनाना है, राइट. कैसा हेल्दी? यहां से हेल्दी, यहां से हेल्दी. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन उठाएगा अब? कौन उठाएगा? हाँ, उंगली रखो. कौन रेडी उठाने के लिए? वैसे आपके पास पहले बहुत सेवा है लेकिन अगर ये वाली सेवा उठा लोगे ना तो वो वाली सेवा थोड़ी कम हो जाएगी. अगर हम यहां से हेल्दी होंगे तो यहां हेल्दी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर आपके पास मरीज नहीं आएंगे. इज दैट ओके? इज दैट ओके? ओहो, अच्छे से बोलो. इज दैट ओके? आप खुश हो अगर आपके पास कोई नहीं आएगा? नो. सुबह सुबह एक संकल्प किया कीजिए कि आज मेरे पास कोई ना आए. क्योंकि अगर आप वो संकल्प करते हैं तो आप एक श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं कि आज कोई बीमार ना पड़े. होना चाहिए कि नहीं इतना अच्छा करो? वैसे आपके पास बहुत भीड़ लगेगी. भीड़ तो आपकी कम हो ही नहीं रही, बढ़ती जा रही है डे बाय डे. लेकिन हमारे इंटेंट में नहीं आना चाहिए कि मेरे पास लोग आने चाहिए. क्योंकि अगर मैंने ये इंटेंट किया ना कि मेरा हॉस्पिटल भरा रहे, मेरी ओपीडी में बैठने की जगह ना हो, देन आई एम रेडिएटिंग अ वाइब्रेशन इन टू द एयर विच इज सेइंग एवरीबडी फॉल इल. ये करना चाहिए हमें, ऐसा संकल्प करना चाहिए, ऐसा संकल्प क्रिएट करना चाहिए कि सारे बीमार हों आज? नहीं. क्या संकल्प करना चाहिए? कि सारे स्वस्थ हों, मेरे पास कोई ना आए. फिर भी लोग तो आएंगे ही, लेकिन आपने अपना कर्म सही किया. आपने अपना कर्म सही करना है. जैसे हम बचपन से सीखते थे ना कि मंदिर भी जाते या प्रार्थना भी करते तो क्या प्रार्थना करते थे विश्व के लिए कि विश्व में क्या हो, क्या कहते हैं, विश्व में शांति हो, सुख हो, शक्ति हो, सेहत हो, सफलता हो। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद हमने थोड़ा प्रेयर को चेंज कर दिया था, हमने बोला विश्व में शांति हो, सुख हो, थोड़ी सी बीमारी भी हो ताकि मेरा काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं। इट्स जस्ट एन इंटेंशन, इट्स अ थॉट, एंड वो थॉट किसकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगा, वो थॉट किसकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगा, वो थॉट हमारी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा कर्म की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किधर होनी चाहिए, ऊपर ऊपर ऊपर, दैट विल क्रिएट आवर हेल्थ। तो आप रेडी हैं इमोशनल फिटनेस पर ध्यान देने के लिए सबकी, रेडी? आपको पता है डे बाय डे कमजोर होते जा रहे हैं यहां से, और ऐसा समय आएगा परमात्मा ने ये बताया हुआ है, तो आप लिख के रखना और जब वो समय आएगा तब याद करना कि यहां आपने सुना था कि ऐसा समय आएगा, और हमारे जीवन काल में ही आएगा। ऐसा समय आएगा कि ये इतना कमजोर हो जाएगा कि परमात्मा ने कहा आपकी दवाइयां लगेंगी नहीं, लोगों के शरीर पर काम नहीं करेंगे, और जब दवाई काम नहीं करती तो आपकी एक शक्ति उन पर काम करेगी। जब दवा काम नहीं करती तो क्या काम करता है, आप कहते हैं ना परिवार को कि अब तो हम जो कर सकते थे हमने कर लिया, अब आपको क्या करना है, दुआ करनी है। तो दुआ का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दुआ, उसका मीनिंग क्या है, दुआ वर्ड का मीनिंग क्या है, दुआ मीन्स द हाइएस्ट वाइब्रेशनल लाइन, दैट इज द दुआ। दुआ मीन्स अ हाइएस्ट वाइब्रेशनल लाइन, आपकी थॉट, आपका वर्ड जो इतनी हाई होगी, इतनी प्योर होगी, इतनी पावरफुल होगी, जो दूसरे के डेस्टिनी को भी क्या कर देगी, चेंज कर देगी। इसीलिए जब कोई मेडिकल प्रिडिक्शन राइट प्रूव नहीं होती, मैं फोन रख दो, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे आराम से, कोई नई बात नहीं है, सब अपने को पता है। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए नहीं, हम सब इकट्ठे हुए हैं जो पता है सारा कुछ, जो सब कुछ पता है उसको इकट्ठे रिवाइज करके यूज करने के लिए। तो दुआ मीन्स व्हेन माय एवरी थॉट इज प्योर एंड पावरफुल, और जब मेरी थॉट प्योर एंड पावरफुल होगी वो डेस्टिनी को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। सिर्फ अपनी डेस्टिनी को नहीं चेंज करेगी, दूसरों की डेस्टिनी को चेंज कर देगी। इसलिए अगर आपने किसी के लिए कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वो दिख रहा था कि वो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं, तो सब लोग क्या कहते हैं, सब लोग क्या कहते हैं, सब लोग कहते हैं किसी की दुआ लगी है। तो दुआ लगी मतलब कोई हाई एनर्जी वर्ड या कोई हाई एनर्जी प्रेयर, हाई एनर्जी मेडिटेशन ने इनकी डेस्टिनी को चेंज कर दिया है। लेकिन दुआ वो चीज नहीं है जो सिर्फ उस दिन करनी है जब कोई प्रॉब्लम आती है। दुआ अ वे ऑफ लिविंग है, दुआ अ वे ऑफ थिंकिंग है, दुआ अ वे ऑफ स्पीकिंग है, विच मीन्स हमारी हर थॉट, हर वर्ड की वाइब्रेशन कहां होनी चाहिए। अब हाथ रख के बताओ कहां होनी चाहिए हमारी हर थॉट और हर वर्ड की वाइब्रेशन, हाईएस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट। और आजकल हमारी थॉट्स एंड वाइब्रेशन कहां चली जाती हैं, कभी भी तो ये अगर दुआ है जो भाग्य बना सकती है, तो उसकी ऑपोजिट एनर्जी भाग्य को क्या कर सकती है, बिगाड़ सकती है। तो जब हम हाई एनर्जी थॉट्स एंड वर्ड्स क्रिएट करेंगे, दैट इज फिटनेस। क्या बॉडी फिजिकली फिट तभी मानी जाएगी जब मौसम परफेक्ट होगा, आसपास कोई बीमार नहीं होगा, विच मीन्स व्हेन माय एनवायरमेंट इज परफेक्ट एंड देन आई एम हेल्दी, इज दैट कॉल्ड फिटनेस, इज दैट कॉल्ड फिटनेस? नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन जब मौसम खराब है, मेरे आसपास 10 लोग बीमार हैं, सब खांस रहे हैं, किसी को जुकाम है, किसी को कोई और वायरस है, और उसके बीच में यू आर हेल्दी, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा कि दिस पर्सन इज इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग फिट, विच मीन्स फॉर मी टू बी फिजिकली फिट आई हैव टू बी अबव व्हाट इज अराउंड मी। हवा दूषित होगी, पानी दूषित होगा, लोग बीमार होंगे, वायरस फैला होगा। आप सब मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आए हैं जो चल के आ रहे हैं? नहीं तो आप थोड़ा पीछे बैठेंगे। फिर एक ध्यान हमेशा रखना है, सिर्फ इस हॉल में नहीं, लाइफ में। कोई ऐसा कर्म ना करो जो आपके कर्म से किसी और के मन की स्थिति हिलनी चाहिए। अब कुछ पैदल चल के आ रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन वो किसके फायदे का सोच रहे थे? वो किसके, जो हम सारा दिन कर रहे होते हैं, किसके फायदे का सोच रहे थे? कि मैं आगे चल के जाऊं, मुझे आगे जगह मिल जाए। मेरे आसपास के लोगों पर उसका क्या असर पड़ रहा है, वो तो हमने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अगर मेरे कोई भी कर्म से, मेरे चलने से, बोलने से, सोचने से, कुछ भी करने से अगर मेरे आसपास के लोगों की मन की स्थिति हिलेगी, देन इट इज लॉ ऑफ कर्मा कि मेरे कर्म से अगर किसी के मन की स्थिति हिली तो मेरा मन एकाग्र, स्ट्रांग, पावरफुल नहीं रह सकता है। सो वे ऑफ लिविंग इज नॉट मेरे लिए क्या सही है, दैट इज नॉट वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग कैसा होना चाहिए? मेरी वजह से, बताइए। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में तो आपको कर ही रहे, मेरी वजह से किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, नॉट फिजिकल, नॉट वर्बल, नॉट थॉट लेवल्स। और उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है, अपने कर्म की क्वालिटी को क्या करना है, ऊपर उठाना है। अब फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग, फिजिकल फिट, अगर सब कुछ मेरे आसपास ठीक नहीं है तो भी मैं ठीक हूं तो हेल्दी है। इमोशनली फिट किसको कहेंगे? इमोशनली फिट किसको कहेंगे? और इमोशनली अनहेल्दी पर किसको कहेंगे? अगर मेरे आसपास लोग सारे बहुत अच्छे हैं, सब मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, अगर मेरी लाइफ की सारी सिचुएशंस परफेक्ट चल रही हैं, तब मैं हैप्पी। इसको फिटनेस कहेंगे? नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन मेरे आसपास की सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, सडनली लाइफ में कोई बात आती है विच इज नॉट माई वे, पीपल आर नॉट बिहेविंग माई वे, पीपल आर नॉट वर्किंग माई वे, बहुत सारी चीजें मेरे अनुसार नहीं है, और उसमें माई माइंड इज स्टेबल एंड स्ट्रांग, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फिटनेस। और अगर ये फिटनेस हमने क्रिएट की तो क्या कुछ चेंज आएगा हमारी लाइफ के अंदर? कौन से वर्ड्स निकल जाएंगे हमारी लाइफ से? अगर ये फिटनेस हमने क्रिएट की, इसको इमोशनल इम्यूनिटी हाई भी बोल सकते हैं, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, इसको इमोशनल कोशेंट बोल सकते हैं, इसको इमोशनल एनी वर्ड, अगर हमने ये क्वालिटी क्रिएट कर ली कि सिचुएशंस मेरे आसपास कोई भी हो, लोग मेरे आसपास कैसा भी बिहेव करें, आई एम हेल्दी, तो कौन से इमोशंस, कौन से वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी से निकल जाएंगे? कौन से वर्ड्स निकल जाएंगे? बहुत सारे वर्ड्स जिनको आप आज नॉर्मल कहते हैं, दुख, और चलो दोनों हाथ आगे करो, देखते हैं फिटनेस क्या और डिजीज क्या। आई से आउट सम संस्कार्स, विच संस्कार यू, विच संस्कार मीन्स नेचर, पर्सनैलिटी, जो आपको लगे इज हेल्दी पुट इट ऑन द राइट हैंड, और जो आपको लगे क्रिएट्स डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट तो देन वी पुट इट ऑन द लेफ्ट हैंड, और रखने के बाद थोड़ा सा बोल देना तो आवाज भी आ जाएगी कि कौन सा है, ठीक है? सबने करना है। एंड रूल ऑफ द गेम, दूसरे कौन से हाथ पे रख रहे हैं वो नहीं देखना है। कलयुग सिर्फ इसीलिए कलयुग बना, सब लोग क्या कर रहे हैं। अब अगर कलयुग में ऊपर उठना है तो ये एक संस्कार तो यहां छोड़ के जाना पड़ेगा कि सब लोग क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो वो मौसम चल रहा है जो सब लोग कर रहे हैं। नाउ इट इज दिस, नाउ वी हैव टू हैव द पावर टू स्टैंड ऑन द राइट इवन इफ वी आर अलोन, अकेले। रेडी स्टार्ट? तो आप सिर्फ बोलते जाइएगा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, किस पर रखा वो वाला, ठीक है? चेकिंग क्या करनी है, विच इमोशन मेक्स मी फील कंफर्टेबल, विच इमोशन क्रिएट्स अ लिटिल डिस्कम्फर्ट। स्ट्रेस, लिटिल स्ट्रेस इज गुड फॉर हेल्थ, Little stress is needed for performance. बोलिए बोलिए बताइए बताइए बताइए. स्ट्रेस नहीं होगा तो परफॉर्म कैसे करेंगे? नीट का एग्जाम है अगले साल, स्ट्रेस तो होना ही चाहिए जी. बताइए पूरी तरह से लेफ्ट हैंड पे है या थोड़ा लेफ्ट है थोड़ा राइट है या कभी लेफ्ट है कभी राइट है? एनीथिंग विच क्रिएट्स अ डिस्कम्फर्ट इज अ डिस्कम्फर्ट एंड एनीथिंग विच विल क्रिएट अ डिस्कम्फर्ट वो मेरी वाइब्रेशन को क्या लेके जाएगा? नीचे. ओके अब रूल ऑफ द गेम स्टार्ट. अब क्लियर? स्ट्रेस, एंगर, हैप्पीनेस, पीस, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन. कंपैरिजन नहीं करना बाकी डॉक्टर्स के साथ अपना. अच्छा नहीं करना. ओके बिल्कुल नहीं करना. कंपेयर करते हैं तो कैसा फील होता है? या तो बहुत ऐसा वाला फील होता है या बहुत ऐसा वाला फील होता है. तो दोनों कंफर्टेबल नहीं है. एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन. अच्छा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी. ये सिर्फ बोलना नहीं है, यहां कोडिंग करनी है इसकी आज और नोटबुक में लिखना भी है. ओके सेल्फ रिस्पेक्ट, इंस्पिरेशन. एक्सपेक्टेशन का ऑपोजिट क्या होगा? क्योंकि हर एक जो लेफ्ट पे है ना उसका एक राइट भी है. एक्सपेक्टेशन का ऑपोजिट क्या होगा? एक्सेप्टेंस. अच्छा कॉम्पिटिशन, मेरे क्लिनिक में कितने आ रहे हैं, सामने वाले क्लिनिक में कितने आ रहे हैं. ऐसे 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 नहीं करते. सोचो रूल, रूल कंफर्टेबल फील होता है वो कंपटीशन की एनर्जी जब चल रही होती है. एकदम शांति से बैठ सकते हैं जब कंपटीशन की एनर्जी चल रही होती है? नहीं. यहाँ की हार्ट बीट थोड़ी बदल जाती है जब कंपटीशन की थॉट चल रही होती है. तो जो चीज यहाँ डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देती है वो यहाँ कितना डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती होगी. सो एवरी टाइम यू हैव टू चेक एनर्जी कौन सी क्रिएट होती है वो वाली इमोशन से. क्रिटिसिज्म करते हैं तो एनर्जी कौन सी क्रिएट होती है? क्रिटिसिज्म का ऑपोजिट, क्रिटिसिज्म का ऑपोजिट अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन. फियर, डर नहीं लगना चाहिए. फियर नॉर्मल नहीं है. फियर नॉर्मल है? फियर नॉर्मल है? हाँ जी. इट्स गुड टू फियर, इट्स नॉर्मल टू फियर. फियर हेल्दी है मेरे लिए, बॉडी के लिए हेल्दी है मेरे लिए, तो फिर नॉर्मल नहीं होगा. ये अलग बात है क्योंकि हम क्रिएट बहुत बार करते हैं तो हम कहते हैं वो क्रिएट तो होगा ही. हाउ कैन आई बी फियरलेस? रूल याद रखना है, वॉट इज नॉट हेल्दी इज नॉट नॉर्मल. यहां से जाने के बाद अगर आप सचमुच समाज को बदलना चाहते हैं जिसकी मेहनत आप पिछले 15 दिन से कर रहे थे, 15 दिन से आप कह रहे हैं समाज ने क्या कर दिया, समाज को बदलने की जरूरत है. अगर सच में समाज को बदलना है तो आप एज अ साइंटिफिक कम्युनिटी को नॉर्मल इमोशन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी दुनिया को. अगर आप उनको कहेंगे स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल, ग्रीड इज नॉर्मल, फियर इज नॉर्मल, लस्ट इज नॉर्मल, अगर ये को हम नॉर्मल कहेंगे तो वो क्रिएट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और जितना वो क्रिएट करते जा रहे हैं वो इमोशनल हेल्थ से क्या हो रहे हैं, वो इमोशनल हेल्थ से और दूर दूर दूर. मतलब वो इमोशनली डिजीज्ड हो रहे हैं हम. और जब हम इमोशनली डिजीज्ड हो जाते हैं तो हर एक के अंदर वो डिजीज अलग अलग रूप लेकर आती है. अंडरस्टूड? कैसे अलग रूप लेकर आई? अभी वो एक डिजीज है. डिजीज मतलब जो मेरे लिए अनकंफर्टेबल है. तो नॉर्मल वर्ड, सबके अंदर वो इमोशन है इज अ डिफरेंट वर्ड, लेकिन वो नॉर्मल है कि नहीं वो आपको बताना है. जब हम एक एनुअल ब्लड चेकअप करते हैं तो मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है उसमें वो सारे जो वर्ड्स लिखे होते हैं. मुझे सिर्फ कौन सा कॉलम चेक करना है भाई, वो जो नॉर्मल, चाहे वो लैब वाले की नॉर्मल रेंज गलत हो वो अलग बात है, लेकिन मेरी चेकिंग तो उसी बेसिस पे होगी बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स ना. तो मैंने जस्ट रिपोर्ट देखनी है, अच्छा ये नॉर्मल है मेरा कितना है, ये नॉर्मल है मेरा कितना है, ये नॉर्मल है मेरा कितना है. अब अगर वो लैब वाले की रेंज ही गलत हो लेकिन मेरा उस रेंज के अंदर फिट हो रहा हो, तो मैंने अपने आप को क्या मानना शुरू कर देना है, आई एम हेल्दी क्योंकि मेरा नॉर्मल की रेंज के अंदर है. इसीलिए वो नॉर्मल की रेंज मेरा फिगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा जो आया वैल्यू उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो नॉर्मल की रेंज कौन सी है, तो वो नॉर्मल की रेंज कौन बताएगा दुनिया को, कौन बताएगा, कौन बताएगा, अब बताओ हाथ उठाने के लिए हो, कौन बताएगा नॉर्मल की रेंज दुनिया को, उठाओ उठाओ उठाओ, रेडी हो आप बताने के लिए लोगों को. गुस्सा क्या है, गुस्सा क्या है, हाँ ऐसे नहीं बोलना उनको कि गुस्सा आएगा तो करना तो होता ही है, उसको सप्रेस नहीं करना, वो लाइन राइट है, ये बोलना चाहिए सप्रेस नहीं करना, लेकिन आपने आधी लाइन बताई, आपने बोला सप्रेस नहीं करना, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने बोला अंदर नहीं रखना, अपने बोल दो, अंदर रखा तो बीमार हो जाओगे, और बोल के कौन से हेल्दी हो गए, बोल के हेल्दी हो गए, शोर मचा के हेल्दी हो गए, दूसरों को रुला के हेल्दी हो गए, नहीं आधी लाइन बोली सप्रेस नहीं करना, साथ साथ बोलना था क्रिएट भी नहीं करना. लेकिन हमारी मेडिकल साइंस की बुक्स में लिखा है एंगर इज नॉर्मल, लिखा हुआ ना, एंगर नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा. जो अनहेल्दी इमोशंस है उसको नॉर्मल बोल दिया दुनिया ने, और आज दुनिया ऐसे हाथ रख के खड़ी है, बोलती है मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मतलब मुझे हेल्थ चाहिए, बट आई विल कीप क्रिएटिंग द अनकंफर्टेबल इमोशंस बिकॉज द वर्ल्ड सेड दैट इज नॉर्मल. ईगो कहां रखेंगे, और ईगो का ऑपोजिट क्या है, राइट हैंड पे. ईगो का ऑपोजिट क्या आएगा राइट हैंड पे, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी. अटैचमेंट, अटैचमेंट कौन से हैंड पे, पक्का पक्का, बच्चों से कोई अटैचमेंट नहीं, बच्चों से अटैचमेंट या नॉट अटैचमेंट. अटैचमेंट इज नॉट नेसेसरी ओनली टू पीपल, attachment to my role, attachment to my position, attachment to my definition of what is right. मेरे thought के साथ भी मेरी attachment होती है, और जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो चीजों के साथ भी attachment होती है. किस किस की गाड़ी पे अगर dent लगे तो थोड़ा सा दुख होता है, बहुत ज्यादा होता है. That is called attachment to object. Attachment मतलब उसका असर मुझ पर पड़ता है, that is attachment. सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आधी अटैचमेंट आपकी सिर्फ अवेयरनेस से खत्म हो जाएगी. इस पर डेंट पड़ा तो मुझ पर डेंट नहीं पड़ना चाहिए, वो सिर्फ एक गाड़ी पर डेंट है ना, राइट और रॉन्ग. अभी आप साक्षी होकर बैठो फॉर अ डेंट ऑन द कार, Should I get disturbed? Should I not? No? Why? It can be mended. But what is the harm in getting disturbed is important. तो क्या हुआ अगर मैंने 5 मिनट thoughts create कर ली, हाँ मेरी गाड़ी को ऐसा हो गया, नई गाड़ी थी अभी अभी लाई थी, ये थी डेंट पड़ गया, कैसे गाड़ी चलाते हैं आजकल, तो लोगों को गाड़ी चलाने नहीं आता, पता नहीं लाइसेंस कौन देता है, लाइसेंस भी क्या पैसे खिला दिए होंगे इसलिए लाइसेंस मिल गया, चला 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 चला, क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने 5 मिनट ऐसा सोच लिया तो, इज इट मेकिंग एनी डिफरेंस, कोई फर्क पड़ रहा है? मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, मैं इतना भी ना सोचूं उसके लिए? जी, इट इज डेंट इज ओनली ऑन कार, वो तो ठीक है बात, लेकिन अगर हमने 5 मिनट्स ये थॉट क्रिएट किए, कोई नुकसान है या नहीं है? क्या नुकसान है? क्योंकि आपको पता है ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो आप बताइए क्या नुकसान हुआ मेरा अगर मैंने 5 मिनट ये थॉट्स क्रिएट कर लिए? अच्छा, मतलब मेरी बॉडी पे भी असर पड़ जाएगा? मैं तो सिर्फ यहां तक का असर सोच रही थी अभी। अगर मेरी गाड़ी पर डेंट पड़ जाए और मैं सहन नहीं कर पा रही, जिस दिन मेरे शरीर पर डेंट पड़ेगा और मैं आपके पास आऊंगी तो मेरा माइंड तो पूरा हिला हुआ होगा, उस टाइम तो डिस्टर्ब होना ही है, नेचुरल है। फिर आप वहां से दवा देंगे, मैं यहां से स्ट्रेस क्रिएट करूंगी, आप वहां से दवा देंगे, मैं यहां से डर क्रिएट करूंगी, तो मेरी हीलिंग को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टाइम ज्यादा लगेगा, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएंगे। और अगर आप वहां से दवा दें और मैं यहां से दुआ दूं, दुआ इज नॉट व्हाट अदर पीपल हैव टू ओनली गिव, दुआ इज फर्स्ट व्हाट द पेशेंट हैज टू क्रिएट, विच मीन्स आप भी हीलिंग कर रहे हैं और मैं भी हीलिंग एनर्जी क्रिएट कर रही हूं, तो हीलिंग जल्दी होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो इसलिए प्रायोरिटी इन हेल्थ इज, और ये उनके लिए नहीं, सबसे पहले ये किसके लिए है? अपने लिए है। कि बातें आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो बाहर हो रहा है। इमोशनल हेल्थ मतलब बाहर का असर, बाहर का असर, बाहर का असर मुझ पर नहीं। आई एम पावरफुल। अगर छोटी छोटी चीजों में अपनी शक्ति को वेस्ट करेंगे, तो जिस दिन जीवन में थोड़ी सी बड़ी बात आएगी, उसको फेस करने की ताकत। इसीलिए अगर आप देखें, हमारे पेरेंट्स, फिर हम, अब आपके बच्चे, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देख रहा है रेजिलियंस के अंदर? दिख रहा है ना, रेजिलियंस के अंदर डिफरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? फिजिकल हेल्थ में डिफरेंस दिखाई दे रहा है तीनों जेनरेशन के अंदर? कौन सी वाली ज्यादा हेल्दी दिख रही है? पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जिस जमाने में हॉस्पिटल ज्यादा नहीं थे, जिस जमाने में इतनी सारी स्पेशलिटीज नहीं थी, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इतनी सारी तो चीजें थी नहीं जो आज सारी है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? वो ज्यादा फिट थे, हम उनसे थोड़ा कम, और ये हमारे से थोड़ा कम, और अब आपके जब ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे, पता नहीं हम कैसी दुनिया बना देंगे तब तक। व्हाई? वेयर इज इट गेटिंग कंट्रोल्ड फ्रॉम? रेजिलियंस, दैट्स द वर्ड, रेजिलियंस। क्योंकि जो हमारी पेरेंट्स की जेनरेशन थी, उसमें हार्डशिप्स ज्यादा थी, तो ऑटोमेटिकली फेस करना, सहन करना, झुकना, 10 लोगों के साथ एक गहर घर में रहना, लेट गो करना, फॉरगिव करना, उनको बहुत कुछ करना पड़ता था, अपनी रेजिलियंस ऑटोमेटिकली बढ़ रही थी। मतलब उनको एक्सरसाइज और जिम जाना नहीं पड़ता था, सारा दिन में इतने काम थे, अपने आप एक्सरसाइज हो रही थी। फिर हमारी जेनरेशन आई, जिसके पास धीरे 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 बहुत सारी ऐसी चीजें आई, जिसकी वजह से हमने अपना ध्यान करना कम कर दिया शुरू। लेकिन अब जो आ रही है वो तो फिर, और सबसे ज्यादा आप खुद ही देख रहे हो, अपने बच्चों के अंदर देख लो, अपने यंग डॉक्टर्स के अंदर देख लो, और अपने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर देख लो। फर्क दिखाई दे रहा है? क्या फर्क दिखाई दे रहा है? बिकॉज दिस शुड बी अ वेक अप कॉल, कि अगर कुछ दिखाई दे रहा है, लेट्स टेक अ यू टर्न क्विकली, अदरवाइज वी गोइंग टू गो अहेड ऑन द रॉन्ग रोड। जब दिखाई दे जाए जीवन में कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो कम से कम रुक कर क्या कर लेना चाहिए? टर्न कर लेना चाहिए ना, नहीं तो वहीं 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 चले जाएंगे। क्या दिखाई दे रहा है, हो रहा है आज बच्चों के अंदर? क्या दिख रहा है जिससे आपको लगता है रेजिलियंस थोड़ी सी कम है, हमारे से थोड़ी सी कम है? वॉट इज द डिफरेंस? पैनिक हो जाते हैं, और इनटॉलरेंस हो गई है, और एंग्जाइटी फील होती है, यस, एडिक्शन बढ़ रही है, गिव अप इजीली करते हैं, अच्छा, डिप्रेस्ड बढ़ रहे हैं, जीवन न जीने के डिसीजन ले जा रहे हैं, अभी भी हम वेकअप कॉल नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे। कोई चीज जब कभी कभी होती है ना तो रेयर लगती है, बढ़ गई ना तो नॉर्मल लगने लगेगी। क्या ऐसी चीजों को नॉर्मल बनाना है समाज के अंदर? इज दिस व्हाट वी विल कॉल अ सक्सेसफुल कंट्री एंड अ सक्सेसफुल वर्ल्ड? क्या इसके लिए मेहनत की थी 30 साल से? तो फिर आपको नहीं लग रहा कि हमें यू टर्न लेना है? लेना नहीं लेना यू टर्न? हाँ, अब उनको कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, उनको इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएंगे? अब कौन कौन अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहता है? वही मेजॉरिटी आपके बच्चे फिर डॉक्टर्स ही बनने हैं। यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, नहीं बनाना अपने बच्चों को डॉक्टर? आपने, आप अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते? हमेशा याद रखना, दुनिया का वायुमंडल हमने ही बनाया है, और बदलेगा भी कौन? हम। ये बोलना सही नहीं होता कि वायुमंडल ठीक नहीं है, हमें अपने बच्चों को वो नहीं बनाना। वो वायुमंडल किसने बनाया? आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ या कोई भी और प्रोफेशन बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द माइंड इज स्टिल गोइंग टू रिमेन द सेम एवरीवेयर। उसके रोल के चैलेंजेस को कम नहीं करना, उसके सोल को पावरफुल कर देना। तो वो जो रोल प्ले करेंगे वहां मैजिकल रोल प्ले करेंगे, वो उसको करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उनको पावरफुल बनाएंगे कैसे? अपने घर में जाइए, विजुअलाइज योर हाउस। 4-5-6 लोग रहते होंगे उस घर के अंदर। उस घर के अंदर एक हवा चलती है। जैसे हम यहां आए हैं आज सुबह या कल आए थे, इस जगह की एक हवा है। और जब से आप यहां आए हैं आप कह रहे हैं इट्स फीलिंग पीसफुल हियर। किस किस को लग रहा है इट्स पीसफुल हियर? या एंड पीस इज पावर। ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है। अभी तो कुछ सीखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कोई चेंज अपने अंदर लाया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन यहां आकर कंफर्टेबल एनर्जाइज्ड फील हो रहा है। आपने उसके लिए कुछ किया? आप सिर्फ आए और वाइब्रेशन आपको बेटर फील करा रही है। क्या ये सेम चीज घर पे नहीं की जा सकती? बच्चों को कुछ नहीं करना है, आप उनके लिए एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करो कि उस घर की हवा में जीते हुए वो पावरफुल बन जाए। क्योंकि यहां जिस एनवायरमेंट में आके आपको अच्छा लगा, वो यहां के रहने वालों ने वो एनवायरमेंट बनाया है। जगह तो सिर्फ एक बिल्डिंग होती है। इस ऑडिटोरियम में और अपने शहर के ऑडिटोरियम में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। कमरे सिंपल है, खाना सिंपल है, कुछ भी नहीं है खास, लेकिन वो वाइब्रेशन बनी कैसे? जो लोग यहां परमानेंटली रहते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, सारा दिन बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए अपने आप को इमोशनली फिट रखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्योंकि वो अपने आप को इमोशनली फिट रखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हवा के अंदर रेडिएट हो रही है वो चीज, और आप यहां आए और बिना कुछ किए आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। आप रेडी अपने बच्चों के लिए ये करने के लिए घर पे? आप रेडी है? क्योंकि यू कैंट गो बैक टू देम एंड से यू नो व्हाट, बिकम स्ट्रांग। नो यू कांट। वो एक अलग वायुमंडल में बड़े हो रहे हैं इस टाइम। वो अगर मेडिकल कॉलेज में, तो उनके आसपास लोग इतने स्ट्रेस्ड हैं, अपसेट हैं, एडिक्शंस हैं, सब कुछ है। वो फ्रेंड्स के बीच में जा रहे हैं, फिर वही वायुमंडल है। वो फोन उठा रहे हैं, फिर वही वायुमंडल है। तो इस समय उनको कहना लाइक एन इंस्ट्रक्शन, बिकम स्ट्रांग, नो इट डजेंट वर्क। लेट्स चेंज द एनवायरमेंट ऑफ द हाउस एंड दैट एनवायरमेंट विल मेक देम स्ट्रांग। आपको इसीलिए यहां बुलाया गया है। यही कि यही कॉन्फ्रेंस आपके शहर में हो सकती है, यही कि यही सेशंस आपके शहर में किसी भी ऑडिटोरियम में किए जा सकते हैं, लेकिन ये वाइब्रेशन हम नहीं ला सकते आपके शहर में। सो वी आर हियर टू सी प्रैक्टिकल प्रूफ How we can change our home, our family and the world. अब जब सारा दिन आप यहां देखेंगे ना, चारों तरफ घूमते रहना और लोगों को अच्छी तरह से देखना जो यहां सेवा कर रहे हैं। कौन कौन आज रात को ही आ गए थे? कल रात को आपने सुना होगा अगर, तो 3:30 बजे एक गीत बजा था आज। किस किस की नींद खुल गई उस गीत से? वो गीत बजना मतलब यहां के रहने वाले सब उठ जाते हैं उतने बजे. 365 डेज ऑफ द ईयर वी वेक अप एट 3:30. उसके बाद से रात के 10 बजे तक मिनिमम हम सेवा पर हैं. सभी आप कहीं भी चक्कर लगाओ यहां पर. तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम और मिथ है ना कि आश्रम मतलब वो तो बड़ी आराम की जीवन है इसलिए तो वहां शांति है इतनी, नहीं, घर में रहना ज्यादा आसान है, यहां रहना उतना आसान नहीं होता है. घर में कितने लोग रहते हैं? 4. इस कैंपस के अंदर 150 भाई बहने रहते हैं. आप रह सकेंगे 150 लोगों के साथ? डेढ़ सौ लोग जो 365 डेज ऑफ द ईयर 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं. हम कितनी देर रहते हैं अपने घर पे? बताइए कितने घंटे आजकल घर पे? उसमें भी मेजॉरिटी टाइम तो सोने वाला टाइम है सिर्फ, तो भी घर की एनर्जी ऐसी नहीं है. ये 150 भाई बहने 365 डेज ऑफ द ईयर यहां रहते हैं. घर पे हम 4 जने फैमिली है, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ. ये 150 का एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं है. ये अलग अलग घरों से आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं. कोई पढ़ा भी नहीं है और कोई PhD कर चुका है. कल्चरली डिफरेंट, परवरिश डिफरेंट और संस्कार भी हर एक के डिफरेंट. और 150 लोग सडनली 24 घंटे 365 डेज ये पिछले 30 साल से इस कैंपस में रह रहे हैं. 30 years. सैलरी मिलती नहीं है, प्रमोशन होती नहीं है. अब आप बताओ खुश रहने का कोई रीजन बचा इधर? तो हमारे पास है खुश होने का कोई रीजन? परिवार हमारे पास नहीं है, सैलरी हमें मिलती नहीं है, प्रमोशन हमारा होता नहीं है और 150 लोगों के साथ हमें रहना पड़ता है. 4 लोग एक कमरे में रहते हैं, जो सब खाते हैं वो खाना पड़ता है, जो सब पहनते हैं वो पहनना पड़ता है. खुश रहने का कोई रीजन है हमारे पास? नहीं. फिर भी आप आए, आपने कहा यहां शांति और शक्ति है. कैसे? कैसे? बैक होम हमारे पास इतना कुछ है जिसको हम कहते हैं इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी. और फिर भी आज हमारे घर के बच्चे कह रहे हैं आई एम एंग्शियस, आई एम डिप्रेस्ड. तो समथिंग इज मिसिंग इन द हाउस. वो एक फैक्टर है सिर्फ जो घर में मिस हो रहा है. कौन सा फैक्टर है वो? क्योंकि अगर अभी नहीं लाया ना अपने घर पे और अपने बच्चों के अंदर नहीं डाला वो, तो आप समझो वो तो आगे अपने बच्चों में बिल्कुल नहीं डाल सकेंगे. ये लास्ट जेनरेशन है हम सब, जिनके पास वो है, जिनको टूल्स पता है, जिनको वो शक्ति आगे देनी है. अगर हमने नहीं दी, देन आज से 10-15 साल की बात की दुनिया देखने लायक नहीं लगेगी आपको. तो वो कौन सी चीज है जो यहां है, जो घर पे नहीं है, जो हमें यहां से घर लेकर जानी है? कुछ एक चीज है यहां पर. जब हम कहीं जाते हैं ना, वहां हम देखते हैं ये शहर भी कौन सी अच्छी चीज है, ये जगह पर कौन सी अच्छी चीज है. अपने घर वालों के लिए लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं? हाँ. यहां तो आपको शॉपिंग करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं घर लेके जाने के लिए. तो आप घर पहुंचेंगे, आपके सब कहेंगे क्या लाए माउंट आबू से, बोलेंगे टाइम नहीं, एक मिनट नहीं दिया उन्होंने गेट से बाहर जाने का. सुबह से रात तक हमको हॉल में बिठा के रख दिया उन्होंने, हम क्या लेकर आते हैं आपके लिए? तो क्या लेकर जाएंगे उनके लिए आप यहां से? क्या लेकर जाएंगे? थिंक, इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक दैट टूडे, सो दैट बाय संडे इवनिंग यू आर वेरी क्लियर कि व्हाट चेंज नीड्स टू बी क्रिएटेड. 15 दिन से आप सब इकट्ठे होकर खड़े हैं ना, समाज को चेंज करना है, लेकिन कितनी देर खड़े रहेंगे? और 15-20 दिन बाद आप सब वापस नॉर्मल पर चले जाएंगे. और अगर कुछ चेंज नहीं किया तो फिर क्या किया? तो प्रोटेक्शन हमें चाहिए, सिक्योरिटी हमें चाहिए, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा रिस्क हमारा किसकी तरफ से रिस्क है हमारे ऊपर? सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हमें किससे चाहिए इस समय? जो बाह्य प्रोटेक्शन चाहिए वो तो चाहिए ही, दैट्स वेरी जस्टिफाइड, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हमें इस समय किससे चाहिए? अपने लेफ्ट हैंड वाले संस्कारों से, क्योंकि वही हमारी जीवन को क्या कर रहे हैं। तो ये तीन दिन जब आप रहेंगे यहां, चलते फिरते घूमना और किसी के ऊपर भी जाकर उंगली रख के उनसे बात करना शुरू करना, आप यहां क्यों आए, आपको यहां क्या मिल रहा है, आपके अंदर क्या चेंज आया, हाउ आर यू लिविंग हियर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, पूछना। और आपको दिख जाएगा कि खुश रहने के लिए एक्चुअली जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। खुश रहने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, एक पावरफुल माइंड। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? मुझे बचपन से क्या, ये करोगे ना तो खुश रहोगे, ये बन जाओगे तो खुश रहोगे, ये पढ़ लोगे तो खुश रहोगे। मिथ। पढ़ाई से खुशी नहीं आ सकती है, प्रोफेशन से खुशी नहीं आ सकती है। खुश रहकर अपने प्रोफेशन और रोल को प्ले कर सकते हैं। लेट्स नॉट गिव द इक्वेशन रॉन्ग कि ये बन जाओगे ना तो हमेशा खुश रहोगे। नहीं, कुछ भी बनने से खुशी नहीं मिलती है। यहां कैसे बनते हैं? वैसे उससे खुश रह सकते हैं। तो आप बताइए, कुछ भी बाहर हो जाए, कैन द माइंड बी स्टेबल? चलो छोटी चीजें लेते हैं। फोन है सबके हाथ में? अच्छा नहीं है तो विजुअलाइज करो, आपके हाथ में पकड़ो जरा एक मिनट अपने हाथ में फोन। ये मेरा फोन है, ये फोन अभी मेरे हाथ से गिर जाए, गिरा नहीं रहे, ये फोन मेरे हाथ से अभी गिर जाए और ये फोन की स्क्रीन सिर्फ स्क्रैच आ जाए, स्टेबल रहेंगे? रहेंगे, क्योंकि अब आप अपने आप को बताएंगे कि रहेंगे। अभी तक हमने अपने आप को बताया था स्क्रैच पड़ा तो बुरा तो लगेगा ही, नॉर्मल है बुरा लगना। इनफैक्ट अगर आपको नहीं लगेगा तो आपके आसपास वाले, तुमको बुरा नहीं लगा फोन पे स्क्रैच पड़ा? मैं बोला नहीं, तुम नॉर्मल नहीं हो क्या? ऐसा, हम ऐसी दुनिया से आ रहे हैं। तो हमने संडे के बाद यहां से जाकर नॉर्मल के डेफिनेशन को चेंज करना है। और आप मुड़कर उनको बोलोगे स्क्रैच तो सिर्फ फोन पे पड़ा ना, मैं यहां परफेक्ट हूं। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसके लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहां प्रोग्रामिंग करनी है। फोन गिरेगा और मैं यहां बिल्कुल परफेक्ट रहूंगा, इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट, राइट? कौन रेडी है ये करने के लिए? एक मिनट, रेडी? दिस इज जस्ट प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है ये। हमें लगता है माइंड मैनेजमेंट कोई बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लीट, तो बहुत इजीएस्ट थिंग है ये करना। प्रैक्टिस हो गई कि फोन गिरेगा, फोन ही है। इसका मतलब ये नहीं है उसके साथ हम केयरलेस हो रहे हैं, इसका मतलब है हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कभी ना कभी उसके ऊपर लग सकता है। अब सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रैच नहीं पड़ा, पूरा का पूरा फोन टूट गया। अब भाई इतना टाइम तो नहीं लगाना चाहिए आंसर देने में। अब हम स्टेबल रह सकते हैं? रह सकते हैं? यस। जैसे ही आप यस बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन कहां जा रही है? इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है या डिफिकल्ट है? कोशिश करेंगे या हो जाएगा? सीक्रेट लेना है, कोशिश करेंगे या हो जाएगा? किसका माइंड है? सोचना कैसे है, कौन डिसाइड करेगा? मैं। फोन टूट गया, हम स्टेबल रहेंगे। गाड़ी पर डेंट पड़ा, भूलते जाओ, क्योंकि मुझे नहीं सुनना है, किसको सुनना है? यहां रिकॉर्ड करना है। आपकी वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की भाषा में बोलते हैं ना, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, तो हम नए वाले फायर कर रहे हैं। अभी तक हमने पुराने बहुत सारे फायरिंग और वायरिंग करके क्या रख दी थी? नहीं, बुरा तो लगेगा ही, गुस्सा तो आएगा ही, दुख तो होगा ही, डर तो लगेगा ही, वो सारे न्यूरॉन्स को चेंज करना है आज। और ये तीन दिन सिर्फ उसी के लिए हम आए हैं। कोविड था, आप तो निडर होकर बाहर सेवा कर रहे थे, बाकी पूरी दुनिया ने कहा कोविड है, डर तो लगेगा, एंग्जाइटी तो लगेगी। एंड नाउ इफ यू सी पोस्ट कोविड, एंग्जाइटी एंड फियर हैज इंक्रीज्ड इन द वर्ल्ड, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों ने 1.5-2 साल सृष्टि की हवा पर फियर और एंग्जाइटी डाल दी।
जैसे यहाँ शांति है ना, तो प्लैनेट की एनर्जी पे फियर एंजाइटी इतनी रेडिएट हो गई, दैट इज वाई पोस्ट कोविड डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इवन डिसीजन नॉट टू लिव हैज इंक्रीज्ड पोस्ट कोविड, बिकॉज वाइब्रेशनली द एयर हैज डिप्ड पोस्ट कोविड, बिकॉज सबने कहा कोविड है, डर तो लगेगा ही. इट इज द लैंग्वेज विच इज इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज. तो फोन टूटेगा तो बिल्कुल परफेक्ट, देखो है, इस तीन दिन में टूट, प्रोग्रामिंग है परफेक्ट, कौन कौन परफेक्ट, गाड़ी को लगेगा तो परफेक्ट, गाड़ी टूट गई पूरी, दिस इज हाउ माई फिटनेस लेवल विल गो हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर. फिर मेरा हाथ टूट गया तो यहां हम पता है क्या सीखते हैं, जिस दिन शरीर भी छूट रहा हो ना तो खुशी खुशी से छूट रहा है, मतलब मरते समय, मतलब मरना वर्ड तो हम यहां नहीं वर्ड यूज करते, हम कहते हैं लीविंग द बॉडी, वी डोंट यूज द वर्ड डाई, आई डोंट डाई, आई जस्ट लीव द बॉडी. शरीर छोड़ते समय भी हैप्पी शरीर छोड़ना है. किस किस का मन है शरीर छोड़ते समय हैप्पी छोड़ना है? अच्छा, जाने के टाइम हैप्पी जाना है, जाने के टाइम हैप्पी तब जा सकेंगे अगर जीते टाइम हैप्पी रहेंगे हर सिचुएशन के अंदर. तो प्रैक्टिस रेडी, इट इज जस्ट अ कंडीशनिंग, इट इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन, इट्स लाइक अ स्विच, ये किया तो ऑन, ये किया तो ऑफ, यहां पे बताते जाओ, ये टूटा तो इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट, ये टूटा तो इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट, ये भी टूटा तो इट्स जस्ट माई बॉडी. एंड जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे, हमारी कंडीशनिंग जो हमने क्रिएट की है, इट विल स्टार्ट चेंजिंग. तो हमारी वाइब्रेशंस क्या होती जाएंगी, हमारी वाइब्रेशंस क्या होती जाएंगी, ऊपर 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 ऊपर. अब आप विजुअलाइज करो, अपने घर पहुंच जाओ, आपकी वाइब्रेशंस ऊपर होती गई और ये आपका घर है, और आप अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर कर लेते हैं तो आपकी घर की वाइब्रेशन क्या होने लग जाएगी. लेकिन इसका ऑपोजिट, फोन पे स्क्रैच पड़ा मैं डिस्टर्ब, फोन टूटा तो मैं बहुत डिस्टर्ब, गाड़ी पे डेंट पड़ा तो मैं डिस्टर्ब, किसी ने मेरा कहना नहीं माना तो मैं डिस्टर्ब, किसी ने कुछ कहा तो मैं दुखी, तो मेरी वाइब्रेशन कहां जा रही है? अब हाथ लेकर आइए, कहां जा रही है? नीचे नीचे नीचे. तो जब मेरी वाइब्रेशन नीचे नीचे जाएगी तो मेरे घर की वाइब्रेशन कहां जाएगी? नीचे. और जब मेरे घर की वाइब्रेशन नीचे जाएगी तो मेरे बच्चों की वाइब्रेशन को क्या होगा? नीचे. सिंपल, पुट द फिंगर हियर, डोंट पुट द फिंगर ऑन देम. एंड बच्चे डजंट मीन जस्ट टू चिल्ड्रन एट होम, इट जस्ट मीन्स एवरीबडी अराउंड, एवरीबडी अराउंड. तो इसलिए हमें अपनी इमोशनल फिटनेस को क्या करना है? बढ़ाना है. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अब अपने माइंड के लिए, हमारी थॉट्स का क्रिएटर कौन है? हमारी इमोशंस का क्रिएटर कौन है? किस कौन को इसको लगता है आई एम द क्रिएटर ऑफ माई इमोशंस? ऑलवेज या कभी कभी? ऑलवेज या कभी कभी? ऑलवेज, पक्का? तो ना, आज एक वोकैबुलरी चेंज करनी है. नोटबुक है आपके पास? नोटबुक नहीं मिली, मिली लिखना है उसमें. आज एक वोकैबुलरी चेंज करनी है, कुछ भी हो जाए. एंड कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी हो जाए, जो इमोशन क्रिएट हो रही है उसका क्रिएटर कौन? आई. तो कौन सी वोकैबुलरी खत्म हो जाएगी? आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ. ब्लेम गेम खत्म करनी है. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपके चेहरे को देखकर मैंने पूछा आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, किस बात की चिंता है, तो उंगली कहां जाती है? उंगली कहां जाती है? क्या बताऊं आपको, उन्होंने क्या किया आज. फिर आपके चेहरे को देखे और उस पर दुख दिखाई दे रहा हो तो क्या बात है भाई, क्यों इतने दुखी हो, मेरे बच्चे ने आज ऐसा कह दिया. फिर आपके चेहरे को देखो और उस चेहरे पे बहुत खुशी दिखाई दे तो बोलो क्या बात है, क्यों आज खुश हो, अरे आपको पता है आज क्या हुआ. What is this vocabulary saying? This vocabulary is saying everything I'm feeling is because of the world. मतलब टेंशन है तो भी बाहर कुछ हुआ है, खुशी है तो भी बाहर कुछ हुआ है, सुखी हूं तो भी बाहर कुछ हुआ है, दुखी हूं तो भी बाहर कुछ हुआ है. तो मेरी इमोशन कौन क्रिएट कर रहा है? मेरी इमोशन कौन क्रिएट कर रहा है? मेरी इमोशन कौन क्रिएट कर रहा है? सिस्टर आप एक मिनट खड़े होंगे? नहीं, ये फर्स्ट हाँ। अभी मैं सबके सामने आपको कुछ बहुत बुरा भला कहूंगी, बड़ा ही गंदा वाला, ठीक है? ओके, रेडी? बहुत ही बुरा, अब्यूजिव लैंग्वेज, डिफेमेशन, जो वर्ड्स यूज करने, वो सब कुछ। दिस इज हर सिचुएशन सामने से आ रही है। अब वो जो इमोशंस क्रिएट करेंगी वो किसकी चॉइस है? मैं अकेले में नहीं, हजार लोगों के सामने, और वो भी लाइव। आप और मैं चले जाएंगे, ये वीडियो नहीं हटता कहीं से भी। सबके सामने मैं उनको बहुत 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 कुछ गलत कहूंगी। ये उनकी लाइफ की सिचुएशन है, उनका रिस्पॉन्स कौन क्रिएट करेगा? जी, आई विल क्रिएट द रिस्पॉन्स, शी विल क्रिएट द रिस्पॉन्स। तीन ऑप्शंस हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर रिस्पॉन्स? आई, शी और बोथ? चलो ओपिनियन बोल लेते हैं, हाथ उठाओ एक बार। आई मतलब मैंने उसका उनको हर्ट किया, मैं हाथ अच्छे से उठा लो। इस हॉल में ना एक भी आंसर गलत नहीं होता, कभी भी चेंज हो सकता है 5 मिनट के बाद, लेकिन गलत नहीं होता, वो सही होता है, क्योंकि वो मेरा बिलीफ सिस्टम है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये साइंस बात नहीं हो रही यहां पे कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। ये इमोशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक एक्सपीरियंस राइट होता है, हर एक एक्सपीरियंस हर एक का सच होता है, तो वो राइट होता है। तो किस किस को लगता है आई एम क्रिएटिंग हर इमोशन, किस किस को लगता है शी इज क्रिएटिंग, और किस किस को लगता है समहाउ दो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल? बोथ? पक्का? डन? ओके। तो जब मैं यहां से शोर मचा रही हूं, चिल्ला रही हूं, बुरे शब्द यूज कर रही हूं, उनके मन के अंदर जो चलेगा, क्या मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हूं? कैन आई एंटर इन टू हर माइंड एंड हर्ट हर? Can I enter into her mind and disturb her? If she allows me, sister, allow करो। कैसे allow करते हैं हम? Allow कैसे करेंगे आप? कैसे हम किसी को allow करेंगे? अगर वो allow भी करे, मैं उसके मन में कैसे घुसूं? Can I enter? Just let's think, because it's a different thinking. हमने कभी सोचा नहीं है। हम तो एक सेकंड में बोलते हैं उसने मेरी इंसल्ट कर दी, बोलते हैं या नहीं करते? हम कहते हैं उसने मुझे हर्ट कर दिया। किस किस को कभी कभी किसी ने हर्ट किया? अब हाथ उठाओ, अभी तो डिलीट करेंगे बाद में उसके ना, लेकिन अभी तो हाथ उठाते हैं ना। हमें उन्होंने हर्ट किया हो, हमें उन्होंने, कभी कभी पेशेंट ही आके इतना जोर जोर से बोल देते हैं, और कभी कभी तो और पेशेंट्स के सामने भी जोर जोर से बोल देते हैं, राइट? फिजिकल प्रोटेक्शन कोई और आपकी कर सकता है, इमोशनल प्रोटेक्शन कौन करेगा? फिजिकल प्रोटेक्शन कोई कर सकता है, इमोशनल प्रोटेक्शन कौन करेगा? हम खुद। और इमोशनल टेरर भी कौन क्रिएट करता है? फिर हम खुद। अब कैन आई एंटर इनटू हर माइंड एंड हर्ट हर? सोच लो, क्योंकि आपको वो सारे नाम डिलीट करने पड़ेंगे फिर, जिनके ऊपर आपने बोला उसने मुझे ऐसा किया, उसने। व्हाट इज माय पावर एंड व्हाट इज हर पावर? माय पावर इज कि मैं शोर मचा सकती हूं, गलत शब्द बोल सकती हूं, रोज बोल सकती हूं। रोज भी बोलते हैं ना कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द वैसे बात में, रोज वो काम कर सकती हूं। क्या मेरे पास ये पावर है कि मैं उनके मन में घुस के उनको डिस्टर्ब कर सकती हूं? हाँ जी, कैन, जस्ट सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल है। कैन आई एंटर इन टू हर माइंड एंड डिस्टर्ब हर माइंड? आई कैन स्टैंड हियर एंड शाउट स्क्रीम, इफ शी अलाउज मी, किसको लग रहा है कि इफ शी अलाउज मी इट्स पॉसिबल? सिस्टर आप एक बार खड़े हो जाओ, नहीं आपको भी लगता है अलाउज, तो फिर आप भी खड़े हो, सब जिनको लगता है अलाउज सारे खड़े हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके नाउ लेट्स सी दैट अलाउ मीन्स व्हाट. यू नो एवरी वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी वर्ड हमारी डेस्टिनी चेंज करती है. नाउ आई एम शाउटिंग एट यू फ्रॉम हियर, हाउ यू थिंक नाउ, लेट्स डू इट राइट अवे बाय माई थॉट. मतलब फिर क्या हुआ? हाँ, इफ शी डजंट रिएक्ट देन मैंने, एक मिनट, मैंने 10 लाइन नेगेटिव बोल दी अभी. ओके ये 10 लाइन यहां से बोली, यहां फैल गई, सबने सुन ली, उन्होंने भी सुन ली. सुनने के बाद वो लाइन के बारे में सोचना कैसे है? अगर वो सोच सकते, हाँ, तो पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? उंगली रखो, नहीं इसकी अपने अपने ऊपर रखनी है. पावर किसके पास है? मेरे पास पावर है? किसी के पास पावर है आपको डिस्टर्ब करने की? लोगों के पास पावर है चिल्लाने की, लोगों के पास पावर है शोर मचाने की, लोगों के पास पावर है आपके बारे में गलत बोलने की, लोगों के पास पावर है आपके बारे में गलत फैलाने की, लोगों के पास पावर है आपके बारे में झूठ भी फैलाने की. ये सारी पावर दुनिया के पास है, लेकिन लोगों के पास सिर्फ एक पावर नहीं है कि वो हमारे मन के अंदर घुस के हमें नहीं हिला सकते. लेकिन जब हम हिलते हैं तो वो हमें कौन हिलाता है फिर? नहीं, ताली बाद में बजाएंगे जब कर लेंगे तब अपने आप के लिए. हमें कौन हिलाता है फिर? तब यहां हमें कौन हिलाता है? हम खुद. कैसे हिलाते हैं? नाउ अगेन टेक हर एग्जाम्पल, एवरीबडी स्टैंड. I will, okay, let's say for example, I say the same 10 lines to all 5 of them who are standing. ठीक है, अब ये भी तो एक बात है, stimulus same है. Stimulus same है, वो 5 गलत lines, 10 गलत lines same है, लेकिन 5 अलग अलग मन respond क्यों करेंगे? मैं तो same, मेरी बात same, मेरा गलत व्यवहार same. अलग अलग thoughts create कर रहे हैं, तो वो अलग अलग thoughts कौन create कर रहा है? तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे रिस्पॉन्स के लिए? रख लो उंगली वहां पर अच्छे से. आई एंड ओनली आई एंड ऑलवेज आई. हियर द वर्ल्ड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे आर डूइंग, बट हियर दिस वर्ल्ड, ये आउटर वर्ल्ड है, ये इनर वर्ल्ड है. आउटर वर्ल्ड में सब कुछ गलत मेरे साथ कोई कर सकता है, लेकिन इनर वर्ल्ड में सही या गलत सिर्फ एक ही जना कर सकता है, और वो एक कौन है? आई. दैट इज इमोशनल फिटनेस. सिर्फ इतना याद रखना भी इमोशनल फिटनेस है. अब इसके बाद आप भले दुख क्रिएट करो, मतलब आपका मन है हर्ट क्रिएट करने के लिए, आप हर्ट क्रिएट करो, नो प्रॉब्लम. लेकिन आप ये मत कहो शी हर्ट मी. वोकैबुलरी चेंज, हु हर्ट मी. अब इसकी लाइन चेंज करते हैं वोकैबुलरी. आप ये कह सकते हैं शी शाउटेड एट मी, आई क्रिएटेड द हर्ट. फर्क है दो बातों में, शी हर्ट मी और शी शाउटेड एट मी, आई क्रिएटेड द हर्ट. ये दो बातों में कोई फर्क लग रहा है आपको? क्या फर्क है इसके अंदर? एक कहता है कि मेरा मन आपके कंट्रोल में है, और दूसरा कहता है आपने जो किया वो किया, लेकिन मेरे मन का कंट्रोल मेरे पास है, मैंने हर्ट क्रिएट किया है. और अगर मैंने हर्ट क्रिएट किया तो ठीक भी कौन करेगा? मैं. क्या मुझे दूसरे को चेंज करने की वेट करनी है? नहीं. तो मुझे हर्ट कौन करता है? अब जल्दी से उंगली रखो उसके पास ऊपर, अभी रखते जाना थोड़ी देर के लिए. मुझे हर्ट कौन करता है? मैं. मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? मैं. मुझे दुखी कौन करता है? मैं. मुझे हैप्पी कौन करता है? मैं. डोंट लुक एट द वर्ल्ड एंड से ये हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी. दिस इज कॉल्ड इमोशनल फिटनेस. सच तो यही है, लेकिन ये सच पता नहीं था तो वी वेंट एंड पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल आर इमोशंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन द वर्ल्ड एंड दैट मेड अस लाइक दिस. मुझे खुशी दो, मुझे प्यार दो, मुझे शांति दो, मेरे से अच्छे से बात करो, क्योंकि जब आप मेरे से अच्छे से बात करेंगे देन आई विल बी हैप्पी. हमारे को सिर्फ एक जना चाहिए जो हमारे से अच्छे से बात करे. कहाँ रहता है वो? छोटी सी गलती क्या हुई थी, उससे दोस्ती नहीं की, सबसे दोस्ती करके रखी. मुझे सिर्फ एक ही जना चाहिए जो मुझसे अच्छे से बात करे. मैं. आप सब मुझे बोलो कि आप बहुत बुरे हैं, और अगर मैं अपने आप को बोलूं आई नो माई सेल्फ आई विल बी फाइन. लेकिन अगर मैं अपने आप को बोलने लगूं ऐसे बोला, ये बोला, वो बोला, मेरे बारे में ऐसे बोला, क्योंकि मैंने सोचा अगर आप सब कहेंगे कि मैं अच्छी हूं तो मैं अच्छी हूं, अगर आप सब कहेंगे मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं. सो आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस फॉर अ सोशल वैलिडेशन. ठीक है, तो इनकी इमोशंस किसने क्रिएट की? अब लास्ट चीज, ये पांच लोग हैं, क्या इनके पास ऑप्शंस है? ये कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं व्हेन आई एम पब्लिकली सेइंग रॉन्ग टू देम? क्योंकि अब पावर उनके पास है, लेकिन अब उस पावर में ऑप्शंस कितनी हैं? पावर तो उनके पास है, वो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब पावर मेरे पास आ गई तो मुझे ऑप्शंस भी पता होनी चाहिए कि कौन सी इमोशंस क्रिएट करने की मेरे पास पावर है. तो मैंने इनको अब्यूज किया, गलत बोला, तो वन ऑप्शन वापस मेरे से वैसे ही बात करें. या ये भी हो सकता है जितना बुरा मैंने बोला उससे भी वो ऑप्शन है या नहीं है. अब आप बताते जाना कौन कौन से ऑप्शंस हैं. मैंने जितना बुरा बोला वो उतना ही बुरा वापस बोले, ऑप्शन है? ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए. सेकंड, मैंने जितना बुरा बोला उससे ज्यादा मेरे से बुरा बोला, वो ऑप्शन है? यस. मैंने जितना ऊंची आवाज में बोला उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बोला, ये ऑप्शन भी है? मैंने जितना बुरा बोला सामने वाला चुप रहा, ऑप्शन है? सिर्फ शब्दों में चुप नहीं रहा, मन में भी चुप रहा, ऑप्शन है? हाँ जी, यहां से चुप नहीं, अंदर यहां नहीं है, यहां है. ये चेंज करना पड़ेगा इस 3 दिन के अंदर. यहां कुछ नहीं होता है, यहां सिर्फ हार्ट है. यहां जो होता है उसका रिजल्ट यहां होता है, इसलिए हमें यहां पता चलता है. लेकिन क्रिएट इमोशन यहां नहीं होता है. इमोशन कहां क्रिएट होता है? यहां होता है, उसका रिजल्ट यहां फील होता है. मैंने इतना कुछ बोला, ये अपने मन को चुप रख सकेंगे? उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करनी है वो हम अगले सेशन में देखेंगे. लेकिन रट्स कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? कर सकेंगे. मैंने इनके साथ इतना गलत बोला, क्या ये मेरे से अच्छे से भी बात कर सकेंगे? मतलब ये जस्ट थिंकिंग के ऑप्शन है. डिफिकल्ट इजी की बात नहीं हो रही, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ऑप्शन है या नहीं है? किस किस को लग रहा ऑप्शन है? अच्छा, वेरी गुड है. और मैंने इनसे इतना गलत बात किया, ये मुझे फॉरगिव कर सकते हैं? वो भी ऑप्शन है. अच्छा, और मैंने इनके साथ इतना गलत किया, ये प्यार से मन में परमात्मा को याद करके मुझे दुआएं दे सकते हैं? ये भी ऑप्शन है. अच्छा, हाथ उठाओ किस किस को लगता है ये ऑप्शन है. अब आप खुद बताइए, फ्रॉम मैंने जो किया उससे ज्यादा जोर से करने से, टू थोड़ा जोर से करने से, टू चुप रहने से, टू मन में भी चुप रहने से, टू अच्छी बात करने से, टू फॉरगिव करने से, टू ब्लेस करने से, कितने ऑप्शंस निकले? और इतने सारे ऑप्शंस हमने एक्सरसाइज ही नहीं किए कभी. हमने कहा उन्होंने किया ही ऐसा तो बुरा तो लगना ही था. फिनिश्ड, पावर ओवर. अब इसमें से जब मुझे ऑप्शंस पता चल गए तो मुझे कौन सा वाला यूज करना चाहिए? लास्ट या फर्स्ट नहीं सोचना, सिर्फ ये चूज करना कौन सा वाला ऑप्शन मेरी स्थिति को क्या करेगा? ऊपर लेकर आएगा. मेरी पावर को क्या करेगा? बढ़ाएगा. शाम को मुझे वो पावर कहां लेकर जानी है? अपने घर. प्लीज रिमेंबर दिस, शाम को मुझे वो पावर कहां लेकर जानी है? अपने घर. आज अगर मैंने आपसे गलत व्यवहार किया, आपने अपने आप को बुरा फील करना अलाउ किया, अच्छा उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कितनी देर बुरा फील करना है, वो भी ऑप्शन है या नहीं ऑप्शन है? कितने ऑप्शन है उसके अंदर, कितनी देर बुरा फील करना है? 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन, 5 साल, है ऑप्शन या नहीं है? किस किस को 5 साल पुरानी बात भी याद है अभी तक? अगर चोट दिखाई दे रही है तो चोट याद रहती है, मार्क बचा हुआ है, जो बात खत्म हो गई थी ना वो याद भी नहीं रहती, दुनिया याद दिलाएगी आपको पता है उस दिन उन्होंने आपसे ऐसे बोले, खत्म हो गई बात, फिनिश्ड। तो सिर्फ कैसे रिस्पॉन्ड किया नहीं, कितनी देर उसको पकड़ के रखा, वो भी पावर किसके पास है? मेरे पास। लेकिन मैं 5 साल के बाद भी उनको देखकर अगर उदास हो जाती हूँ तो मैं कहती हूँ पता है आपको 5 साल में इन्होंने मेरे साथ माउंट आबू में, वो डेट पता है क्या थी उस दिन, 30 अगस्त 2024 फ्राइडे था, सुबह 11:30 बजे का सेशन था। आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था आपने? शायद पोहे खाए थे, पता नहीं, याद नहीं है। लेकिन 5 साल पहले उस डेट उस टाइम पर, द वाउंड इज सो फ्रेश। ये वो चोटे हैं जो हम क्रिएट करते हैं, पकड़ के रखते हैं, दवा ना उस दिन लगाई थी ना उसके बाद लगाते हैं, और इसीलिए वो चोट अभी तक फ्रेश है। और जब वो चोट फ्रेश होती है ना, उसके बाद वो जहां जहां लगती है और घाव पे घाव पे घाव पे घाव आता जाता है। तो चोट को कितनी देर में ठीक करना चाहिए, चोट को ठीक कितनी देर में करना चाहिए? और जब वो घाव पे घाव आते रहेंगे 5 साल के अंदर अंदर, फिर 10 साल के अंदर अंदर, तो यहाँ की शक्ति क्या हो जाएगी? एक दिन ऐसा ना हो आपको मेरा हाथ ही ऑपरेट करना पड़े क्योंकि एक घाव मैंने ठीक नहीं किया था, और उस घाव पे घाव पे घाव पे घाव पे घाव आते गए क्योंकि लोगों ने तो मेरे साथ अलग अलग तरह से बात करनी ही है, सिचुएशंस तो मेरे साथ ऊपर नीचे आनी ही है, लेकिन मैंने कहा बिकॉज ऑफ देम बिकॉज ऑफ देम बिकॉज ऑफ देम। तो दुआ दें उनको जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया। इतनी देर अभी भी डिसाइड करने में इतनी देर लगेगी? हाँ जी, आप बैठ जाइए बाकी पीछे। हाँ जी, नहीं शेयरिंग बाद में करेंगे, इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोलना है तो बताए जी। ऑफ कोर्स, नेचुरली। आप बैठ जाओ। हाँ कुछ और कहना था आपने? ये तो हमें पता है, लेकिन अगर घर पे किसी ने कह दिया ऐसा कुछ तो अच्छा वो मैटर करते हैं। वो आप चाहते हैं आप इन्फ्लुएंस, अच्छा वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें। ओहो ये एक और बिलीफ सिस्टम है, ये देखो ये इस बिलीफ सिस्टम को चेक करना आप। वो चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, जो पेशेंट है, एक मिनट, जो पेशेंट है ये इसको भी अंडरलाइन करना, और आपके लिए करना बहुत इजी है। जब पेशेंट चिल्ला रहा है, जब पेशेंट गलत बोल रहा है, जब पेशेंट एलिगेशन भी लगा रहा है, आप फिर भी कंपैशनेट हैं क्योंकि आप कहते हैं वो बीमार हैं, वो दर्द में हैं। अगर कोई रिश्ता, कोई बच्चा भी आपका गलत बोल रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, रूडली बात कर रहा है, शोर मचा रहा है, क्या वो बीमार नहीं है? क्या वो बीमार नहीं है? वो इमोशनली पेन में है। तो जितना कंपैशन फिजिकल डिजीज के लिए रखते हैं, उतना या शायद उससे भी ज्यादा किसके लिए रखना होगा? इमोशनल के लिए। एक बार एक डॉक्टर नर्सेस प्रोग्राम था, तो उनसे पूछा आपको किस बात का स्ट्रेस है, तो कहते डॉक्टर्स गुस्सा करते हैं। मैं कहा ये कारण है आपके स्ट्रेस का? तो मुझे लगा उनकी ड्यूटीज इतनी मुश्किल होती हैं, वो वाला स्ट्रेस का कारण होगा। कहते नहीं, वो सब तो हमको आता है करना, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ लाइफ ना। वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन आई सेड पेशेंट तो कितने अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी खाना नहीं खाते, कभी वो पाइप हटाते हैं. कहते उनसे भी बुरा नहीं लगता, वो बीमार है ना. मैं कहा जो गुस्सा करते वो भी बीमार है. कहते नो वो तो डॉक्टर है. मैं कहा मन से दुखी, जब हम अपनी नॉर्मल से हट जाते हैं हम डिसईज्ड हैं. प्योरिटी पीस पावर, आज सुबह सुना था सात संस्कार अपने कौन से हैं, प्योरिटी पीस पावर लव हैप्पीनेस विजडम ब्लिस, दिस इज हेल्थ. जब मैं आत्मा यहां से शिफ्ट होती हूं मैं अपनी पोजिशन ऑफ ईज से शिफ्ट हो जाती हूं, आई एम डिसईज. तो जब कोई गुस्सा करता है वो इमोशनली डिसईज पे चला गया, वो अपनी ईज की पोजिशन से शिफ्ट हो चुका है. तो सारी चीजें जो लेफ्ट हैंड पे रखी थी वो एक इमोशनल डिसईज है. तो क्योंकि आपके पास कंपैशन इतना कूट कूट के भरा हुआ है, आपके लिए बहुत इजी है ये करना, कि जैसे फिजिकल बीमार के लिए कंपैशन है, इमोशनल डिसईज के लिए भी कंपैशन चाहिए. तो फिर उसके अगले दिन एक नर्स ने मुझे फोन किया, उसने कहा ये बहुत इजी है करना. मैं कहा इजी तो सब कुछ ही है, बहुत इजी, ये सब कुछ बहुत इजी होता है करना. कहते आज उन्होंने फिर ऑपरेशन थिएटर में आया ना, फिर गुस्सा किया. कहती वैसे वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कितना भी करें ना उनको कुछ ना कुछ गलती दिख जाती है, वो गुस्सा कर देते हैं. मैं कहा फिर? कहती आज मैंने थॉट क्रिएट किया वो बीमार है. मैं कहा फिर क्या हो गया? कहती फिर मेरे को बुरा नहीं लगा. कल तक मैं बोलती थी उन्होंने मुझे गुस्सा, सी व्हाट वी डू, हम दूसरे का इमोशन अपने ऊपर लेते हैं. उन्होंने मुझे गुस्सा कर दिया, उन्होंने सबके सामने मुझे बोल दिया ना, वो डिस्टर्ब्ड है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज हर नेक्स्ट लाइन. उन्होंने कहा उसके बाद, कहते फिर मैंने थॉट क्रिएट की कि मैं क्या करूं जिससे मैं उनके मन की स्थिति को मैं ठीक कर दूं. कंपैशन, दिस इज कंपैशन, कि दूसरा जो गलत व्यवहार कर रहा है वो अपने मन की स्थिति में डिस्टर्ब्ड है, हम ऐसा क्या करें जो उस डिस्टर्ब्ड व्यक्ति को ठीक कर दें. अब आप बताओ, मैं डिस्टर्ब्ड हूं, मैं जोर से चिल्ला रही हूं, आप क्या ऐसा करेंगे जिससे मेरे मन की स्थिति ठीक हो जाए? ऑप्शंस को वापस ले आओ. मैं चिल्ला रही हूं, मैं दुखी हूं, मैं लोअर एनर्जी पे हूं. लेफ्ट हैंड पे रखिए उसको, अपने स्टिमुलस को जो आपके साथ गलत तरह से व्यवहार करते हैं, और अपने आप को लाइए राइट हैंड के ऊपर. अभी देखते हैं कौन सी चीज क्या कर देगी. ठीक है, बच्चों को ले आइए, किसी को भी ले आइए जो कभी कभी चिल्ला के जोर से या कुछ ऑपोजिट बोल देते हैं. वो वाइब्रेशन में कहां है? ऊपर है नीचे है? उस समय सिर्फ कहां पर है वो? नीचे है, लोअर एनर्जी पे है. अब मेरे ऑप्शंस देखिए, मैं उनसे ज्यादा जोर से बोलूं तो मैं किधर जाऊंगी? नीचे. अगर मैं नीचे गई, मेरी नीचे की वाइब्रेशन किधर जाएगी? उनके पास. वो कहां जाएंगे? नीचे. मतलब मैंने क्या किया? बीमार को और बीमार कर दिया, बीमार को और बीमार कर दिया, दर्द वाले को और दर्द दे दिया. वी एड पेन टू देयर पेन. अब मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर बहुत दुखी. इतना करो इनके लिए, इतना करो, इतना करो, आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं. ये मेरा नेगेटिव वाइब्रेशन दर्द का है. तो ये भी किधर जाएगा? उनके पास जाएगा. वो किधर जाएंगे? फिर से नीचे जाएंगे. आई एड पेन टू देयर पेन. मन से मैं चुप रही तो आई डोंट एड पेन टू देयर पेन, आई जस्ट कीप देम वेयर दे आर. अब उनको हील करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? उसके लिए मुझे अपने मन में कॉन्शियसली उनके लिए एक दवाई क्रिएट करनी है. और मन के दर्द की जो दवाई है, मन का दर्द भी एक थॉट है और मन के दर्द की दवा भी एक थॉट है, और उस थॉट को दुआ कहते हैं, विच मीन्स अ प्योर पावरफुल थॉट विच इज अ ब्लेसिंग. तो अब यहां मैं दर्द में हूं और यहां आप वहां से थॉट एक क्रिएट करो, पावरफुल सोल, पीसफुल सोल, ब्यूटिफुल सोल, प्योर सोल, बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे हैं. तो ये आपकी वाइब्रेशंस मेरे पास कहां जाएंगी? ऐसे आएंगी. और ये वाइब्रेशंस मेरे दर्द को क्या करना शुरू करेंगे? क्या करेंगे? अगर आपके दर्द की वाइब्रेशन मेरा दर्द बढ़ा रही थी, तो आपकी प्योर एंड पावरफुल वाइब्रेशन मेरे दर्द को क्या करेंगे? तो आप यहां रहेंगे तो सबसे पहले कौन प्रोटेक्ट हो गया? आपकी करेक्ट थॉट ने सबसे पहले किसको प्रोटेक्शन दी? आपको दी. आप यहां रहे, आप नीचे नहीं आए. फिर आपने जब दुआ क्रिएट की, तो दुआ ने किसको एनर्जाइज किया? देखो आप यहां पर हैं, ठीक है, सो लेट्स से दिस इज 30, दिस इज 50. अगर आपने दर्द क्रिएट किया तो आप 50 से किधर चले जाएंगे? 40 चले जाएंगे. अगर आपने कुछ नहीं क्रिएट किया, जस्ट साइलेंट माइंड रहा, तो आप 50 का 50 पे रहेंगे. अगर आपने मेरे लिए दुआ क्रिएट करी, आप 50 से बताइए कहां जाएंगे? 60 पे. इसका मतलब दूसरे के लिए अच्छा थॉट क्रिएट करके सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ती है? हमारी शक्ति बढ़ती है. और जब आपकी शक्ति बढ़ती है और वो शक्तिशाली वाइब्रेशन मेरे पास जाती है, मैं 10 पे थी तो आपकी दुआ मुझे 10 से क्या कर देगी? ऊपर ले आएगी 20. अब सारा दिन ये 10-20 का खेल खेलते रहिए और शाम को घर पर आइए, यू आर एट 80. दिस इज कमिंग होम एवरी इवनिंग ना. अब आप 80 पे क्रिएट करके आप घर आ जाइए एंड आपकी 80 की वाइब्रेशन घर पे रेडिएट हो जाएगी. और आपका बच्चा अगर 50 पे चल रहा है और अगर कल उसका एग्जाम है तो वो 40 पे चल रहा है और आपने घर पे आके 80 वाली वाइब्रेशन क्रिएट कर दी, तो आपने बिना कुछ किए उसकी स्थिति को ऊपर उठा दिया. तो इमोशनल फिटनेस एक ऐसी चीज है जो हमारी इंडिविजुअल की नहीं रहती. फिजिकल फिटनेस इंडिविजुअल की रहती है. मैं अपना ध्यान रखूं शरीर का तो मेरा शरीर फिट रहता है, मेरे परिवार का शरीर फिट नहीं हो जाता मेरी वजह से. लेकिन इमोशनल फिटनेस ऐसी चीज है कि आप अपने आप को जितना स्ट्रांग बनाते जाएंगे, आपके आसपास के लोग आपकी वाइब्रेशन की वजह से स्ट्रांग बनते जाएंगे. इसलिए आपको इस कैंपस में आके अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रेजिंग योर वाइब्रेशन. और ये क्यों रेज हो रही है? क्योंकि जो यहां रह रहे हैं वो अपने आप को रोज रेज करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और आपको आने के बाद रेडीमेड मिल गई. इसी तरह जब आप करेंगे आपकी फैमिली को मिलेगा, आप करेंगे आपके कलीग्स को मिलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप करेंगे तो किसको मिलेगा? आपको तो मिलेगा ही, आपको मिलेगा, आपकी फैमिली को मिलेगा, आपके कलीग्स को मिलेगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मिलेगा, पेशेंट. नाउ विजुअलाइज, दिस इज योर रूम, दिस इज योर ओपीडी, दिस इज योर सीट, यू आर सिटिंग हियर, दिस इज योर टेबल, और आपके टेबल के अक्रॉस हर 10 मिनट एक पेशेंट आ रहा है और हर पेशेंट के साथ एक दो फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं. वो बहुत हैप्पी स्थिति में आ रहे हैं? वो बहुत हैप्पी स्थिति में आ रहे हैं? नहीं. हमेशा याद रखना, जो आपके पास आ रहा है वो सिर्फ फिजिकली डिजीज्ड नहीं है, वो इमोशनली अपसेट है. है या नहीं है? तो जैसे ही वो आपसे मिलने आएंगे, आप बात करेंगे, आपने मन के बारे में बात नहीं करनी है, आपने तो पूरी शरीर के बारे में ही बात करनी है. लेकिन आप जिस वाइब्रेशन पर जी रहे हैं वो वाइब्रेशन उनको वो 5 मिनट, वो 10 मिनट उनको वो मिलती जा रही है और उनको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपसे मिलने से उनकी शक्ति बढ़ जाएगी. यू विल हील द माइंड बिफोर यू इवन स्टार्ट ट्रीटिंग द बॉडी. दैट इज द पावर यू हैव. जस्ट योर वाइब्रेशंस विल हील द माइंड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्ट्स. एंड अगर आपकी वाइब्रेशन उनको सुकून देती है तो आपको नहीं लगता उनका शरीर जल्दी ठीक होगा? होगा या नहीं होगा? इन अ वर्ल्ड जो हमारे अंदर बहुत सारा मिसट्रस्ट और डाउट क्रिएट कर रहा है डॉक्टर्स के बारे में, सिस्टम के बारे में. और जब मैं आपसे मिलने आऊं एज अ पेशेंट, मेरे माइंड में ऑलरेडी 10 थॉट्स है. पता है उस हॉस्पिटल में ये हुआ था, उस डॉक्टर ने ये किया था, उन्होंने एक्स्ट्रा स्कैन करा लिया, उन्होंने ये कर लिया. आई कम विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रस्ट करने पर मजबूर हो जाएं, बस उनका मन करे आपको ट्रस्ट करने का, डजेंट मैटर दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में, इट विल ओनली हैपन इन वन वे, वाइब्रेशन. आप कितने भी सर्टिफिकेट्स अपने अपने कैबिन में लगा लीजिए, आप कितने भी अपने अवार्ड्स सब कुछ रख लीजिए अपने ओपीडी में, उससे ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होता. ट्रस्ट बिल्डअप होता है वाइब्रेशन से. तो वो एक छोटा सा पुरुषार्थ जो आपने किया कि किसी ने आपके साथ गलत बोला और आपने एक सेकंड में उसको एक दुआ दी, खुद को बचाया, खुद को एनर्जाइज किया, अपने आसपास के लोगों को एनर्जाइज किया और उसके बाद सारा दिन में जितने पेशेंट आएंगे उनको वो एनर्जाइज्ड वाइब्रेशन मिली और फिर वो सारी एनर्जी शाम को घर गई, अपने बच्चों को एनर्जाइज किया। सिर्फ क्या किया इसके लिए, इतना सब कुछ होने के लिए सिर्फ क्या किया कि जब किसी ने मुझे कुछ गलत किया, कहा, मैंने रिटर्न में एक ब्लेसिंग दे दी। डोंट यू थिंक इट्स वर्थ प्रैक्टिसिंग इट? इज इट वर्थ प्रैक्टिसिंग और नॉट वर्थ प्रैक्टिसिंग? बहुत इजी है। और इसका ऑपोजिट, उन्होंने कुछ किया, मैं थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, हर्ट हुई, उसके बाद मैं जिनको मिली उनको मेरी हर्ट की वाइब्रेशंस पहुंचती गई और फिर उसके बाद दिन में जितने पेशेंट मुझे मिले उनको भी मेरी हर्ट की वाइब्रेशन पहुंचती गई और शाम को जब मैं घर गई तो मेरी हर्ट की वाइब्रेशन मेरे साथ गई और वो मेरे बच्चों को भी डिप्लीट किया। वन थॉट दुनिया को यहां लेकर जा सकती है, वन थॉट यहां लेकर जा सकती है। द पावर इज, किसके पास है पावर? किसके पास है पावर? यहां। एंड स्पेशली क्योंकि आपका रोल सारा दिन परेशान मन से मिलने का है, सिर्फ बीमार शरीर से मिलने का रोल नहीं है आपका, तो यू आर एनीवेज एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वरी, चिंता, फियर, स्ट्रेस। वो आपका एनवायरमेंट है, आपके हॉस्पिटल का एनवायरमेंट इस कैंपस का ऑपोजिट है। सिर्फ फर्क यह है क्योंकि आप रोज वहां रहते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है कि वो वाइब्रेशन कैसा, बिकॉज इट हैज बिकम योर कंफर्ट जोन, वो आपका रोज। बट एक्चुअली आपके हॉस्पिटल का वाइब्रेशन इस कैंपस का बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें तो दर्द में ही आएंगे ना लोग, डर में आएंगे, चिंता में आएंगे, फिर वहां पे और चीजें भी होती हैं, फिर कोई शरीर छोड़ता है, वहां ग्रीफ है, इतना कुछ होता है वहां पर। वहां आपको सारा दिन रहना है और वहां आपको सारा दिन उन दर्द में आए हुए लोगों से मिलना है, तो आपका एक्सपोजर टू पेन बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर आपको अपना वाइब्रेशन किधर रखना होगा? किधर रखना होगा? अगर नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया, तो सिर्फ ये वातावरण और लोगों का वाइब्रेशन ही आपको नीचे ले आएगा। इसलिए आज से वन होमवर्क, रेडी होमवर्क करने के लिए? हम स्कूल में आए हुए 3 दिन के लिए, सत्संग में नहीं, ऐसे सुनको सुनना नहीं है, सिर्फ होमवर्क करना है उसके ऊपर। सबसे पहला आज का होमवर्क जो आपने आज रात को सोने से पहले करना है, अगर किसी के प्रति भी कोई चोट क्रिएट करके रखी हुई है अपने मन में, आज उसको हील करना है। कॉन्शियसली अपने नोटपैड पे लिख के उसको हील करना है, चाहे वो बात कल हुई थी, 5 साल पहले हुई थी या 20 साल पहले हुई थी, आपको उस बात को निकालना है और उसके बारे में जो आपने थॉट क्रिएट की थी उसको चेंज करना है। क्योंकि घाव कितना भी पुराना हो, घाव तो घाव ही है ना। हमें लगता है कि वो बात पुरानी हो गई, लेकिन अगर अभी भी याद है तो वो एक वूंड है। कौन कौन रेडी हीलिंग करने के लिए? रेडी? किस किस को लगता है मेरे पास घाव है? हाँ, घाव तो ऐसे होते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ कहा था, वो भी मुझे अभी तक दर्द हो रही है कोई बात। हाँ, बच्चों के अंदर बहुत घाव होते हैं, इंटेंशन नहीं समझ में आती ना, जस्ट वी टेक द वर्ड एज इट इज एंड वी होल्ड ऑन, ऐसा कैसे कह दिया मुझे। सो आज वो छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कलीग्स हो, चाहे वो पेशेंट हो, किसी पेशेंट ने आपके साथ भी गलत तरह से बात की हो और वो गलत थे, गलत कर रहे था वो व्यक्ति, सिर्फ मुझे अपनी थॉट को आज चेंज करना है और सिर्फ थॉट लेवल पे नहीं करना, मुझे लिख कर करना है उसको आज। आई विल राइट कि आई फॉरगिव, आई रिलीज द पास्ट एंड आई सेंड देम लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स। 3 लाइन लिख लें, रेडी लिखने के लिए? हाँ, लेकिन 3-4 बार लिखना आज। आपको याद है स्कूल में होमवर्क नहीं करके आते थे तो टीचर क्या बोलते थे? पता नहीं आजकल बोलते हैं कि नहीं, हमें तो बोलते थे ना, होमवर्क नहीं करके आते थे तो क्या करने वाले, 100 टाइम्स लिखो, आई विल डू माई होमवर्क, आई विल, दे वर क्रिएटिंग अकॉर्डिंग योर। तो हमें भी अपनी थॉट्स को चेंज करने के लिए थोड़ा सा लिखना चाहिए, रोज लिखना चाहिए और रोज रात को शुक्राना भी लिखना चाहिए। एक शुक्रिया जरूर लिखना चाहिए रात को और एक कुछ भी किसी के लिए हुआ था या क्रिएट किया था उसको दवाई रोज रात को लगानी चाहिए। रोज के रोज दवा लग जाए तो मन को सही सोचना आ जाएगा और थोड़े दिन के बाद मन घाव क्रिएट ही नहीं करेगा जिसके लिए दवा लगानी पड़ेगी। इट विल नॉट हैपन बिकॉज प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे सोचना है। ठीक है जी, एवरीबडी विल डू दिस, डन। एंड छोटी सी प्रैक्टिस दूसरी कौन सी करनी है? तीन दिन में भी कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी बातें, फोन आ सकता है, कुछ हो सकता है, इमोशन क्रिएट होगी. डोंट से इट इज बिकॉज ऑफ आई एम क्रिएटिंग दिस इमोशन. गलत वाला भी क्रिएट कर दिया तो भी रुक के बाद में चेंज कर लेंगे. गलत भी क्रिएट करते रहे नो प्रॉब्लम, सिर्फ ये नहीं कहना वो इमोशन क्रिएट कर रहे हैं. बोलो आई क्रिएटेड. इरिटेशन कौन क्रिएट करता है? इरिटेशन कौन क्रिएट करता है? इरिटेटिंग पेशेंट. इरिटेटिंग पेशेंट किस किस के पास है? इरिटेटिंग पेशेंट इरिटेटिंग पेशेंट नहीं, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, वो बात बार बार करते हैं, वो बार बार पूछते रहते हैं. इरिटेटिंग कौन है? लेकिन बी वेरी क्लियर, वो क्या करते हैं, मैं क्या करती हूं. वो बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो ऑनलाइन सब स्टडी करके आते हैं, फिर पूछते रहते हैं. वो करते हैं, वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. लेकिन इरिटेशन कौन क्रिएट कर रहा है? बस यहां का ब्लेम किसी पे नहीं डालना, यहां का आप सब पे डालते रहो. अभी यहां का नहीं डालना. दिस इज इमोशनल पावर, दिस इज इमोशनल इंडिपेंडेंस. माई माइंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एंड दिस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इमोशनल फिटनेस. और ये सारी शक्ति किसके पास जाएगी? घर. ठीक है, तो यहां से घर क्या लेके जाएंगे हम मंडे को? यहां से घर हम क्या लेके जाएंगे मंडे को? पावरफुल वाइब्स नहीं जाएगी, पावरफुल वाइब्स क्रिएट करने का मेथड जाएगा. क्रिएट तो वहां जाके करनी है. यहां से नीचे उतरेंगे पता चलेगा ट्रेन कैंसिल हो गई, बारिश हो रही थी. सोचो, विजुअलाइज करो, संडे रात को मंडे जा रहे हैं, स्टेशन पहुंचे पता चला ट्रेन कैंसिल, कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? हाँ, यहां तो आप वापस कभी भी आ सकते हो. आप जाओ ही मत, हमें तो कुछ नहीं, आपका घर, ये तो आपका घर है. ये प्रैक्टिस है, ये इसको तीन दिन करते जाओ. अभी भी तीन दिन बहुत कुछ होगा. आप डाइनिंग हॉल में जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, सब्जी जो बनेगी वो पसंद नहीं आएगी, बहुत कुछ हो सकता है. कोई व्यवहार ठीक से नहीं करेगा. जस्ट प्रैक्टिस. ये उनका व्यवहार है, ये मेरी थॉट है. ये उनका व्यवहार है, ये मेरी थॉट है. जस्ट create that independence. This is detachment. This independence is detachment. कि मेरी emotion आपसे नहीं dependent है, ये मेरी creation है. और गलत वाली create भी कर ली, रुक के फिर अच्छी वाली create कर लेना. तो irritation कौन create कर रहा है? मैं. और खुशी भी कौन create कर रहा है? मैं. तो जब आप वापिस जाएंगे आप सदा खुश रहेंगे. और फिर आपको कोई अगर आके पूछेगा क्या बात है आज बहुत खुश हो, तो क्या बोलोगे? क्या कहोगे? कहो दिस इज हु आई एम, ये मेरी नेचर है. ऑलवेज लाइक दिस. दिस इज इमोशनल फिटनेस. नेचर मतलब जो हमेशा रहती है. तो किस किस को खुशी चाहिए? अभी भी चाहिए? डेढ़ घंटे के बाद चाहिए? नहीं चाहिए मतलब समथिंग हैज टू हैपन आउटसाइड फॉर मी टू चाहिए. अब चाहिए नहीं, अब खुशी क्या करनी है? क्रिएट करनी है. वोकैबुलरी चेंज. वी आर ओनली गोइंग टू चेंज वोकैबुलरी दिस थ्री डेज. खुशी चाहिए नहीं, प्यार चाहिए नहीं, रिस्पेक्ट चाहिए नहीं. और चाहिए तो रोज अपने आप को दुआ दो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं. है ना, देने वाली आत्मा. तो यहां से तीन दिन में मन बुद्धि ऐसे की जगह कैसे बन जाएगा? ऐसे, ऐसे वाला बनेगा. ओके जी, 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे. आप सब कंफर्टेबल हैं फिजिकली कंफर्टेबल हैं? एवरीबडी एकदम परफेक्ट? आपको पता है आपके लिए प्रकृति भी बदल गई है आज सुबह से. ऐसे होती है सेवा, सिर्फ भाई बहने सेवा नहीं कर रहे, प्रकृति भी सेवा कर रही है आपकी. कितना अच्छा मौसम है आज, धूप निकली एक हफ्ते के बाद यहां. कल भी जो आए थे उन्होंने भी देखा होगा कि कल कितनी बारिश थी यहां पे, थी या नहीं कल बारिश. अब आप सिर्फ एक थॉट क्रिएट करना कि अब बारिश मंडे को होगी इधर. आपको लगता है प्रकृति पर असर नहीं पड़ता? करके देख लो, करके देख लीजिए, करके देखिए. और अगर होनी है तो तब होगी जब हम हॉल के अंदर हैं. करके तो देख लो ना, बाद में देखी जाएगी बाहर क्या होता है। थॉट तो क्रिएट कर लेते हैं, करने ऐसा थॉट क्रिएट करें। बारिश प्रकृति हमारी साथी है, बस प्रकृति को हम सम्मान दें तो प्रकृति भी हमारा बहुत ध्यान रखती है। पानी यहां बहुत जरूरी था क्योंकि यहां तो बारिश ही नहीं हुई थी बड़े दिन से, नक्की लेक खाली हुई पड़ी थी, पूरा साल कैसे चलता शहर बिना पानी के, तो बारिश अच्छे से हुई। बट आप आए तो बारिश ने कहा वो आए हैं जो सबको सुख देते हैं, तो मैं इनको सुख दूंगी, इसलिए प्रकृति अभी आपको सुख देगी अच्छे से 3 दिन। लेकिन हम प्रकृति का सम्मान करते हैं ना, तो प्रकृति हमारा बहुत ध्यान रखती है। रखते कि नहीं प्रकृति ध्यान? ठीक है, तो मंडे तक मौसम कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? परफेक्ट। बोलो परफेक्ट रहेगा, और परफेक्ट परफेक्ट बोलते जाओ, और फिर अगर बारिश होगी ना तो बोलना ये भी परफेक्ट, क्योंकि फिर यहां परफेक्ट वाली प्रोग्रामिंग क्रिएट हो जाएगी। आज हम लंच साइलेंस में करेंगे। कौन रेडी है साइलेंस में आज करने के दौरान? एकदम मौन में, बहुत ज्यादा बातें करते हैं हम सबके साथ, आज अपने आप के साथ करेंगे। साइलेंस में चलेंगे, वॉक डाउन इन साइलेंस। मौसम बहुत अच्छा है, छाते की जरूरत नहीं है, यूज दैट। जब हम साइलेंस में रहते हैं ना, हमारी वाइब्रेशन की कैचिंग पावर बढ़ जाती है, बिकॉज हम क्रिएट नहीं कर रहे यहां कुछ भी। तो साइलेंस में चलते हैं, साइलेंस में खड़े होंगे लाइन में, साइलेंस में खाना लेंगे, साइलेंस में खाएंगे। जो हम यहां खा रहे हैं वो प्रसाद है, तो उसको प्रसाद की तरह जहां तक हो सके वेस्ट नहीं करना। वेस्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि वो आप पर बोझ चढ़ता है, वैसे ही कभी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रसाद नहीं वेस्ट करना चाहिए कभी भी। इसीलिए ध्यान से लीजिए, बार बार और लीजिए, लेकिन वेस्ट नहीं कीजिए, है ना। तो हम साइलेंस में भोजन करेंगे, 4 बजे हम यहां वापस आएंगे, दीपा बेन सेशन लेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, कि आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ के ही ये इमोशनल फिटनेस बढ़ने वाली है, तो वो कैसे करना है वो आज हमारे इवनिंग के सेशंस होंगे। 1 मिनट की प्रैक्टिस करें फिर से, ये बार बार करनी है प्रैक्टिस। सिट स्ट्रेट, ब्रिंग अटेंशन हियर, सेंटर ऑफ द फोरहेड, एंड जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ। जब हम इन संकल्पों को रिपीट करते हैं विजुअलाइज करने के साथ साथ, तो हमारी कोडिंग चेंज हो रही है। आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, हर सिचुएशन में स्टेबल, एकरस, एकाग्र, कुछ भी हो जाए मेरे आसपास मैं अचल, स्ट्रॉन्ग। कोई कैसा भी व्यवहार करता है मेरे साथ, मैं उनको दुआएं, क्षमा, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं। आई एम द पावर हाउस ऑफ माई फैमिली। मुझे हर रोज बहुत सारी शक्ति कमा के घर लेकर जाना है। सारा दिन में शक्ति कमाने, शाम को घर लेकर जानी है। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूं। अब हम इसी स्थिति में चलेंगे, चलते हुए अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, किस किस के साथ मेरा इमोशन डिस्टर्ब होता है, कौन से बिहेवियर में मेरा इमोशन डिस्टर्ब होता है, कौन सी चीजें कोई करता है तो मैं रिएक्ट करती हूँ, और उसको रिप्लेस करते जाएंगे रिस्पॉन्स के साथ। आप अपनी कोडिंग करते हुए चलेंगे, सब उठ सकते हैं बिल्कुल साइलेंस में।